ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पुनर्विचार के लिए किया वापस। सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति संबंधी अध्यादेश लागू। 2082 चैत 12 से पहले नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हो गए हैं, कानून मंत्रालय की द्वारा जानकारी। बागमती और सहायक नदियों के किनारे जोखिमयुक्त बस्तियों के स्थानांतरण से छूटे नागरिकों से शीघ्र संपर्क करने की शहरी विकास मंत्रालय ने की अपील। भूमि अभिलेख सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक सुकुमवासियों की जांच हुई शुरू। अतिक्रमित संरचनाओं से हटाए गए नागरिकों के लिए इसी साल के चैत मासांत तक सभी व्यवस्था करने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सरकार से आग्रह। और इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों को तुरंत घर खाली करने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने वाला अध्यादेश 2083 जारी किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवैधानिक परिषद कार्य कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि पहला संशोधन अध्यादेश 2083 को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा जारी प्रेस की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर 14 वैशाख को राष्ट्रपति के पास आया था और इसके विषय वस्तु पर पुनर्विचार के लिए इसे मंत्रिपरिषद को लौटाया गया है। विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले इसी विषय से संबंधित विधेयक 25 आषाढ़ 2082 को प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया गया था, जिसे संदेश सहित वापस भेजा गया था। साथ ही 2 मार्गशीर्ष 2082 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार प्राप्त समान अध्यादेश भी जारी नहीं किया गया था। सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गए 8 अध्यादेशों में से 7 जारी किए जा चुके हैं, जबकि संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पुनर्विचार के लिए वापस किया गया है। सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 जारी होने के बाद 2082 चैत 12 से पहले नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हो गए हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा कल जारी किए गए अध्यादेश की धारा 2(1) के अनुसार पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुए हैं, ऐसा कानून न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्रालय ने बताया है। मंत्रालय द्वारा आज सार्वजनिक किए गए अध्यादेश में उल्लेख है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति में चाहे जो भी शर्तें सुविधाएं और कार्यकाल निर्धारित किए गए हों, अध्यादेश लागू होते हुए अपने पद से स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अध्यादेश की धारा 2 की उपधारा 2 में कहा गया है कि पदमुक्त किए गए पदाधिकारी को संबंधित मंत्रालय के सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी पदमुक्ति की सूचना देंगे। ये अध्यादेश जारी होने के साथ ही विभिन्न कानूनों और संरचनाओं के अंतर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाए कुल 1594 पदाधिकारी एक साथ पदमुक्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और राज्य के निकायों को नई गति देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सचिवालय की बैठक ने निर्णय लिया है कि हाल में हटाए गए अतिक्रमित संरचनाओं और सुकुमवासी बस्तियों से विस्थापित नागरिकों के लिए इसी साल के चैत अंत तक भोजन, आवास, स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार से आग्रह किया जाए। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय वनस्थली में आज हुई बैठक के बाद प्रवक्ता मनीष झा ने जानकारी देते हुए कहा कि सुकुमवासियों का डेटा संकलन करने के लिए अधिकार संपन्न प्राधिकरण गठन होने तक अधिग्रहित संरचनाओं को छोड़कर अन्य स्थानों पर घर या संरचनाएं तोड़ने के लिए डोजर का उपयोग न किया जाए। प्रवक्ता झा ने बताया कि अतीत में सरकार ने इस समस्या के समाधान पर गंभीर ध्यान नहीं दिया था और उनकी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार भूमिहीन सुकुमवासियों को व्यवस्थित रूप से बसाने की पहल की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नदी किनारों पर वर्षा के समय बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए वहां रहने वाले सुकुमवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना आवश्यक था। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में प्रवक्ता झा ने स्पष्ट किया कि विभिन्न सरकारी निकायों में पहले की गई नियुक्तियों की प्रक्रिया और आवश्यकता की समीक्षा करने के उद्देश्य से अध्यादेश के माध्यम से पदमुक्ति की गई है। बैठक ने आगामी स्थानीय तह चुनाव के लिए कैंडिडेट क्लब की घोषणा तथा उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को भी स्वीकृति दी है। काठमांडू घाटी में बागमती और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध संरचनाओं को हटाने का अभियान आज भी जारी रहा। शहरी विकास मंत्रालय, जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू और काठमांडू महानगरपालिका के समन्वय में आज बूढ़ा नीलकंठ नगरपालिका के कपन क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई संरचनाओं को हटाया गया। ये बात काठमांडू के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल ने बताई। इसके अलावा धोबी खोला नदी कॉरिडोर के अंतर्गत अनामनगर, देवीनगर, विष्णुमती नदी के किनारे स्थित बालाजू माछा पोखरी क्षेत्र तथा तिलगंगा क्षेत्र में भी अतिक्रमित संरचनाओं को हटाने का अभियान जारी है। उनके अनुसार अब तक काठमांडू घाटी में लगभग 2300 से अधिक अतिक्रमित घर और संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। पिछले शनिवार से काठमांडू के थापाथली, सिनामंगल, कैरी गांव और भक्तपुर के मनोहरा क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमित संरचनाएं और सुकुम्बासी बस्तियां हटाई गई थीं। इस दौरान प्रभावित परिवारों को कीर्तिपुर, बालाजू और भक्तपुर सहित विभिन्न स्थानों पर बनाए गए होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14#डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शहरी विकास मंत्रालय ने बागमती और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित जोखिम युक्त बस्तियों के स्थानांतरण प्रक्रिया से छूटे नागरिकों से शीघ्र संपर्क करने की अपील की है। मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा में सहायता की आवश्यकता वाले और वर्तमान में सड़क पर भटक रहे नागरिकों से त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में बनाए गए प्राथमिक पंजीकरण केन्द्र में उपस्थित होकर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया गया है। वास्तविक भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों से भी पंजीकरण केंद्र में उपस्थित होकर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बच्चों की शिक्षा और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों के सुरक्षित, व्यवस्थित और दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय ने भूमि अभिलेख सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक सुकुम्बासियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय के सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी कि इस प्रणाली के माध्यम से ये जांच की जा रही है कि सुकुम्बासी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम पर देश के किसी भी स्थान पर जमीन है या नहीं। उन्होंने बताया कि फिलहाल शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार काठमांडू घाटी के सुकुम्बासियों की जांच की जा रही है और इसके बाद क्रमिक रूप से पूरे देश में ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसी बीच मंत्रालय ने भूमि संबंधी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कर्मचारी, तकनीकी जनशक्ति, पेशेवर कौशल, तकनीक और अन्य संसाधनों की जानकारी देने के लिए देश के सभी 753 स्थानीय निकायों को पत्र भेजा है। रासोपा अध्यक्ष रवि लामिछाना ने उद्योगपतियों से न डरने का आग्रह किया है। उन्होंने निजी क्षेत्र से बातचीत में कहा कि सरकार और रासोपा से डरने की जरूरत नहीं है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ और नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने रासोपा और मौजूदा सरकार पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में जो डर और आशंका का माहौल दिख रहा है उसी को देखते हुए उन्होंने ये संवाद शुरू किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सरकार का इरादा व्यवसायियों को परेशान करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यवसायियों के कारण सरकार को सख्ती करनी पड़ी है और समस्याओं के समाधान के लिए रोडमैप तैयार है। मौके पर उद्योग संगठनों ने स्थिर माहौल और निवेश प्रोत्साहन की मांग की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल पत्रकार महासंघ ने आज माइती घर से बानेश्वर तक रैली निकाली। मानवाधिकार आयोग ने प्रेस स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी की और इसे मानव अधिकार का हिस्सा बताया। पत्रकार संघ और कानूनी प्रतिनिधियों ने प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया। सरकार विद्यालय क्षेत्र के सुधार के लिए संघ और स्थानीय तहों के बीच समन्वय को प्रभावकारी बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय विद्यार्थी नामांकन शुल्क और विवाद के संबंध में स्थानीय सरकार और सरोकार वालों के साथ विचार विमर्श करेगा, ये जानकारी मंत्रालय ने दी। त्रिशूली मैलुंग सैफ्रोवेसी रसुआगढ़ी राजमार्ग के सैफ्रू रसुआगढ़ी खंड में तेजी से स्तरोन्नति का काम चल रहा है। नेपाल सरकार ने चीन के साथ व्यापार को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए सड़क सुधार का काम शुरू किया है, लेकिन सैफ्रोवेसी मैलुंग खंड में काम अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है। ठेकेदारों की देरी के कारण ठेका रद्द कर पुनः प्रक्रिया शुरू करने में समय लगने से कार्य प्रभावित हुआ है। 80.4 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में नेपाली सेना ने कुछ हिस्सों में ट्रैक खोल दिया है। अब नए कटिंग, भूस्खलन रोकथाम, नाली पिचिंग और 20 से अधिक पुल बनाने की योजना है। कांति लोकपथ में भरेंग डाडा पर मौजूद भूस्खलन का मलबा हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। अन्य प्रमुख राजमार्गों पर भी यातायात सामान्य है। नेपाल चीन सीमा पर स्थित रसुआगढ़ी नाके से पवित्र धार्मिक स्थल मानसरोवर और कैलाश पर्वत की तीर्थयात्रा शुरू हो गई है। अब तक लगभग 300 तीर्थयात्री चीन के केरुंग नाके के माध्यम से मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, ऐसा रसुआ के टिमुरे स्थित आप्रवासन कार्यालय ने जानकारी दी है। कार्यालय के कार्यवाहक प्रमुख मेघनाथ शर्मा के अनुसार इस वर्ष भारतीय, रूसी और ब्रिटेन के नागरिक भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइली सेना ने आज दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा है। कम से कम 1000 मीटर दूर खुले इलाकों में जाने की चेतावनी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक सेना ने कहा कि वो दक्षिणी लेबनान के 11 कस्बों और गांवों पर हमला करेगी। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट के अनुसार सेना का दावा है कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है। सेना का यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के विरुद्ध है क्योंकि उसने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। सेना ने चेतावनी दी कि जो भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों या उनके ठिकानों के पास मिलेगा उसे खतरा हो सकता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी, संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पुनर्विचार के लिए किया वापस। सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति संबंधी अध्यादेश लागू, 2082 चैत 12 से पहले नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हो गए हैं, कानून मंत्रालय द्वारा जानकारी। बागमती और सहायक नदियों के किनारे जोखिमयुक्त बस्तियों के स्थानांतरण से छूटे नागरिकों से शीघ्र संपर्क करने की शहरी विकास मंत्रालय ने की अपील। भूमि अभिलेख सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक सुकुम्बासियों की जांच हुई शुरू। अतिक्रमित संरचनाओं से हटाए गए नागरिकों के लिए इसी साल के चैत मासांत तक सभी व्यवस्था करने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सरकार से आग्रह। और इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों को तुरंत घर खाली करने की दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।